वफादार सेवा और उस देश के प्रति सम्मान दिखाना जो अब उनका नहीं था। आखिरी लेसन की शुरुआत और खुद के बारे में सोचना। जब मैं यह सब सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारा सुना। अब मेरी बारी थी सुनाने की। उस भयानक पार्टिसिपल रूल को जोर से साफ साफ और बिना एक भी गलती के कहने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर देता, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही उलझ गया और वहीं अपनी डेस्क पकड़े खड़ा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने मिस्टर हैमिल को मुझसे कहते सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रांज, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो कैसा है, हर दिन हम खुद से कहते थे बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा, और अब देखो हम कहाँ हैं। आह, अल्सेस के साथ यही बड़ी परेशानी है, वह हर चीज कल पर टाल देती है। भाषा का महत्व और टीचर की जिम्मेदारी। हैमिल ने आगे कहा, तुम खुद को फ्रेंच कहते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। बेचारे छोटे फ्रांज, हम सबके पास खुद को कोसने की वजह है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के बारे में ज्यादा परेशान नहीं थे, और मैं, क्या मैं भी दोषी नहीं हूं? क्या मैंने तुम्हें अपने लेसन सिखाने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी? फिर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाते हुए मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बोलना शुरू किया, यह कहते हुए कि यह दुनिया की सबसे साफ सबसे लॉजिकल भाषा है, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह सबसे खूबसूरत भाषा है और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। आखिरी ग्रामर और लिखने का लेसन। फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और हमें लेसन पढ़कर सुनाया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह समझ गया था। सब कुछ इतना आसान, इतना सिंपल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा आदमी हमें वह सब कुछ दे देना चाहता था जो वह जानता था। ग्रामर के बाद लिखने का लेसन था। एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे जिन पर लिखा था फ्रांस, अल्सेस, फ्रांस, अल्सेस। वे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे। कमरे में सिर्फ कागज पर पेन की खरोंच की आवाज आ रही थी। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाने को कहेंगे? 40 साल की यादें और विदाई का पल। जब भी मैं ऊपर देखता, एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले एक के बाद एक चीज को देखते रहते थे। 40 साल से वे एक ही जगह पर थे, सब कुछ छोड़कर वे कितने दुखी हुए होंगे। ऊपर मैं अपनी बहन को सामान पैक करते हुए सुन सकता था। वे सभी अगले दिन देश छोड़ने वाले थे, लेकिन उनमें हर लेसन को आखिर तक सुनने की हिम्मत थी। ओल्ड हाउसर भी कमरे के पीछे रो रहे थे, उनकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। ये बहुत अजीब था कि हम सब एक ही समय में हंसना और रोना चाहते थे। आखिरी विदाई, फ्रांस अमर रहे। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे। उसी पल प्रशिया के बिगुल बजने लगे। एम हैमिल खड़े हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं, लेकिन किसी चीज ने उनका गला घोट दिया। वह आगे नहीं बोल सके। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा, विवे ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने अपना सिर दीवार से टिकाया और अपने हाथ के इशारे से उन्होंने इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। सोचे और समझे उस दिन बर्लिन से आए ऑर्डर से स्कूल में क्या बदलाव आए। एम हैमिल और स्कूल के प्रति फ्रांज की भावनाएं कैसे बदली। लेखक का परिचय, अल्फोंस डोडेट 1840-1897, एक फ्रेंच नावेलिस्ट थे। यह कहानी फ्रेंको प्रशिया युद्ध 1870-1871 के बैकग्राउंड पर आधारित है, जिसमें फ़